ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद् गीता अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 29। मेरे पीछे बोलिए, भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 29। भोक्तारं यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम् सूरिदं सर्वभूताना ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुवन्ति दिव्येस्तवे वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित प्रति बुधवार इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज परम पवित्र दिन है। आप सब लोग जानते होंगे, आज भगवान श्री कृष्ण की परम प्रिय तिथि जिसे माधव तिथि कहा जाता है और हमारी भाषा में हम एकादशी तिथि कहते हैं। आज एकादशी तिथि है और आज के प्रवचन में हम एकादशी के बारे में कुछ वर्णन करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को शांति प्राप्त करने का मार्ग बता रहे हैं। ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति है अर्जुन, यदि शांति प्राप्त करनी है तो जिस प्रकार से मैं कह रहा हूं उस बात को जानना होगा। सबसे पहले इस संसार में सब लोग शांति प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसी भक्ति विधान स्वामी श्री प्रभुपाद जी इस श्लोक के परपोट में लिखते हैं। संसार के सभी जीव सभी मनुष्य शांति चाहते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो शांति नहीं चाहता। सब लोग शांति और सुख चाहते हैं, संसार में कोई शांत नहीं। सब लोग चिंता में दुख में क्लेश में क्रोध में काम में पड़े हुए हैं, और ये सभी चिंता दुख क्लेश इस संसार के सभी लोगों को सता रहे हैं। संसार दावा नललीढ लोक, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जैसे जंगल में वन में अग्नि लगती है, वन में जब आग लगती है तो उसे दावाग्नि कहा जाता है, और उस दावाग्नि की विशेषता यह होती है कि जंगल की आग चारों ओर से लगती है, और उस जंगल के बीचों बीच रहने वाला प्राणी उस आग से बाहर नहीं निकल सकता है। चारों ओर से आग है और सभी प्राणी चारों ओर की आग में फंसे हुए हैं, और बेचारे जलते जलते मर जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे जंगल में दावाग्नि लगती है, वैसे ही इस भौतिक जगत में जिस जगत में हम रह रहे हैं, इस जगत में दावाग्नि नहीं है, भव महादावाग्नि है। मान लो उस जंगल में रहने वाले प्राणी उस आग से बच भी सकते हैं, परंतु चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि इस भौतिक जगत रूपी दुख रूपी महादावाग्नि से कोई नहीं बच सकता। इस भौतिक जगत में रहने वाले प्रत्येक जीव दुखी है, क्योंकि दुखी करने के लिए ही यह जगत बनाया गया है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र भगवत गीता में कहते हैं, अर्जुन मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। यह संसार यह भौतिक जगत दुखों का आलय है। आलय का अर्थ होता है समुद्र। जैसे समुद्र में पानी के अलावा कुछ नहीं होता है, वैसे इस भौतिक जगत में दुख के अलावा और कुछ नहीं होता है। सब लोग दुखी हैं, सब लोग चिंताग्रस्त हैं, शोकग्रस्त हैं। चिंता का अर्थ होता है भविष्य की बात को याद करके दुखी होना, इसे चिंता कहते हैं, और भूतकाल की बात को याद करके दुखी होना, इसे शोक कहते हैं। संसार में सब लोग शोक और चिंता के कारण जल रहे हैं। एक संत तो कहते हैं चिता अपि गरियसी। चिता और चिंता ये दोनों समान शब्द है, केवल अनुस्वार का भेद है। चिता किसे कहते हैं? व्यक्ति जब मर जाता है तब उसके शव को शमशान में जिस लकड़े के ऊपर जलाते हैं उसे चिता कहा जाता है। तो चिता भी जलाती है और चिंता भी जलाती है, दोनों जलाने वाली है। परंतु चिंता चिता अपि गरियसी, चिता जो होती है वे मरे हुए व्यक्ति को जलाती है, और चिंता जीवित व्यक्ति को जलाती रहती है। बहुत दुखदाई है, बहुत दुख देने वाली है। सब लोग चिंतित हैं क्या होगा हमारा, तो चिंता के कारण सब लोग अशांत हैं। और अशांत होने का और एक कारण है कि संसार में लोगों को संतोष नहीं है। बहुत बहुत कुछ होने के बाद भी यदि संतोष नहीं है तो कभी व्यक्ति शांति को प्राप्त नहीं हो सकता है। असंतोष के कारण इस जगत में फंसने के कारण सब लोग अशांत हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि शांति को प्राप्त होना है तो सबसे पहले भोक्ता राम यज्ञ तपसाम। तुम्हें जानना होगा कि मैं ही इस संसार में सभी यज्ञ और सभी तपस्याओं का भोगता हूं। सर्वलोक महेश्वरम। ये अर्जुन यदि शांति को प्राप्त करना है, शांति चाहिए, तो तुम्हें जानना होगा कि मैं सभी लोगों का ईश्वर हूं। केवल ईश्वर ही नहीं, महाईश्वर हूं। ईश्वर का अर्थ होता है कंट्रोलर। जो कंट्रोल करे उसे ईश्वर कहा जाता है। इस संसार में बहुत सारे ईश्वर हैं। जितने भी पति, कुछ पति अपने पत्नी के कंट्रोलर होते हैं, कुछ पत्नी अपने पति की कंट्रोलर होती है, माता पिता बच्चों के कंट्रोलर होते हैं। सभी छोटे मोटे ईश्वर हैं, परंतु इस मनुष्य से भी उच्च कोटि के ईश्वर है देवतागण। देवता भी संसार की कुछ वस्तुओं को कंट्रोल करते हैं, परंतु उस देवताओं के भी ईश्वर यदि कोई है तो वो है भगवान श्री कृष्ण। इसलिए कहते हैं कि महेश्वरम महाईश्वरम, भगवान श्री कृष्ण महाईश्वर है और ब्रह्मा जी परम ईश्वर कहते हैं। ईश्वर परमम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, भगवान श्री कृष्ण ईश्वरों के भी ईश्वर है, कंट्रोलर के भी कंट्रोलर है। किस प्रकार से भगवान एक है और इस दुनिया में अनंत अनंत जीव है, एक होकर इस संसार में सभी लोगों को भगवान कैसे कंट्रोल करते हैं? तब यमराज जी भागवत के छठे स्कंद में अपने दूतों को कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी माया के द्वारा इस संसार के सभी जीवों को कंट्रोल करते हैं। दृष्टांत देते हैं, जैसे बैलगाड़ी चलाने वाला किसान बैल के नाक में रस्सी डाली होती है और उस रस्सी को किसान अपने हाथ में, बैलगाड़ी चलाने वाला अपने हाथ में रखता है। जब राइट में जाना हो तो राइट वाली रस्सी खींचता है, लेफ्ट में जाना हो तो लेफ्ट वाली खींचता है, और जब रुका देना हो तो जोर से दोनों रस्सी को खींच लेता है और वो बैल खड़े रह जाते हैं। कंट्रोल करता है वह किसान उस बैल को। ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण माया रूपी रस्सी के द्वारा इस जगत में रहने वाले सभी जीवों को कंट्रोल करते हैं। संसार के सभी लोग कंट्रोल है, इसलिए चैतन्य चरितामृत में कहा गया है एकले ईश्वर कृष्ण। इस संसार में एक ही भगवान है, एक ही ईश्वर, एक ही कंट्रोलर है, वो है कृष्ण। आर सब भृत्य, बाकी के जितने भी लोग हैं, चाहे देवी हो, देवता हो, मनुष्य, किन्नर, गंधर्व, ये सब लोग भृत्य का अर्थ होता है सेवक। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, जाहे देखे नाचाय ते तैसे करे नृत्य। भगवान श्री कृष्ण इस जगत के लोगों को जैसे नचाना चाहते हैं वैसे जगत के लोग नाचते हैं। कठपुतली का खेल आपने देखा होगा, एक व्यक्ति अपने उंगली के ऊपर रस्सी बांधकर कठपुतली को खिलाता है। ठीक उसी प्रकार भगवान माया रूपी रस्सी के द्वारा जगत को नचाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण महाईश्वर है, यह बात जाननी होगी। दूसरी बात यह जाननी होगी कि सुहृदम सर्वभूतानाम, भगवान श्री कृष्ण सभी जीवों के, भूत का अर्थ होता है जीव, भगवान श्री कृष्ण सर्वभूतानाम सुहृदम। सुहृदम का अर्थ होता है उपकारी, भगवान श्री कृष्ण सभी जीवों के उपकारी है, सभी जीवों के प्रति उनका प्रेम है। देखा गया है इस संसार में जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं उसे भी भगवान हवा, पानी, प्रकाश इत्यादि देते हैं, और जो लोग भक्ति नहीं करते हैं उसे भी भगवान हवा, पानी, प्रकाश देते हैं, और जो लोग भगवान को गाली देते हैं उसे भी भगवान हवा, पानी और प्रकाश देते हैं। इसका अर्थ यह है कि भगवान सभी जीवों के प्रति सुहृद है, सभी जीवों के प्रति सम है। इसलिए गीता में कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय, संसार के सभी जीवों के प्रति मैं सम हूं, किसी के साथ द्वेष नहीं है, किसी के साथ प्रेम नहीं। रामायण में भी कहा गया है सब मम प्रिय मम सब उपजाया, सब पर मोर बराबर दाया, इस संसार में सभी जीवों के ऊपर मेरा समान प्रेम है। भगवान श्री कृष्ण सबके सुहृद है, सभी लोगों के महेश्वर है और सभी यज्ञ और तपस्या के भोक्ता है। ये तीन बात यदि कोई जान लेता है तो शांति को प्राप्त हो सकता है। तो भक्तों और दो चीज है, ईश्वरम और सुहृदम सर्वभूतानाम, इसके ऊपर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। परंतु तपसा भोक्ता, भोक्तारम यज्ञ तपसा, भगवान श्री कृष्ण ही सभी तपस्याओं के भोक्ता है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। इस संसार में देखा गया है कि कुछ लोग बहुत तपस्या करते हैं, बहुत बहुत तपस्या करने के बाद भी वे शांति को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति तपस्या करेगा तो शांतिम इच्छति, वे शांति को प्राप्त होगा। परंतु देखा गया है कि इस संसार में कुछ लोग बहुत तपस्या करते हैं, कुछ लोग नहीं, सब लोग तपस्या करते हैं, बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब लोग। छोटे छोटे बच्चे बेचारे रोज सुबह 5-6 बजे उठ जाते हैं, स्कूल में जाना, ट्यूशन में जाना, उससे जब बड़े होते हैं तब कॉलेज में जाना, होमवर्क करना, उससे जब बड़े होते हैं तब ऑफिस में जाना, और ट्रेन में विरार से चर्च गेट, बोरीवली से चर्च गेट। ट्रेन में जितनी तपस्या होती है और कहीं नहीं होती है। वैसे आपको कहा जाए कि 1 घंटे तक दोनों हाथ ऊपर रखो और अपने अंगूठे के ऊपर खड़े रहो जैसे हिरण्यकश्यप खड़ा रहा, कोई 1 घंटा खड़ा नहीं रह सकता है, परंतु ट्रेन में न चाहते हुए भी जबरदस्ती तपस्या हो जाती है। तो चाहे फर्स्ट क्लास हो या सेकंड क्लास हो, इतनी भीड़, इतनी गर्दी होती है। देखा गया है कि हाथ ऊपर होते हैं, हाथ नीचे करने का कोई चांस ही नहीं होता है, और व्यक्ति का पांव यहां होता है तो सिर यहां होता है, बिल्कुल हवा में खड़ा होता है, अपने बल पर नहीं खड़ा होता है, और बिल्कुल अंगूठे के ऊपर खड़े रहते हैं। तपस्या सब लोग करते हैं फिर भी शांति नहीं मिल रही है, कारण क्या है? चलो ये तो न चाहते हुए तपस्या हो रही है, कुछ लोग तो जानबूझकर तपस्या कर रहे हैं। तपस्या अर्थात व्रत करते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्र, शनि, रवि, आज तो सब वार हो गए हैं। कुछ लोग सोमवार रहते हैं, कुछ मंगल, कुछ बुध, कुछ गुरु, व्रत रहते हैं, तपस्या करते हैं। कितने भी व्रत रहते हैं, तपस्या करते हैं, फिर भी शांति नहीं मिलती है, क्यों बताइए? जितने भी लोग इस प्रकार का व्रत करते हैं, किसको शांति प्राप्त हुई? तब भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में उत्तर देते हैं कि ये सभी व्रत और सभी तपस्या मुझ कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए होनी चाहिए। यदि व्रत और तपस्या कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए की जाए तो शांति इच्छति, व्यक्ति शांति को प्राप्त हो सकता है। इसलिए हम हमारे जीवन में तपस्या करेंगे तो एकमात्र कृष्ण के लिए करनी चाहिए, और कृष्ण के लिए यदि तपस्या करना चाहते हो तो और सब कुछ छोड़कर केवल एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत, एकादशी की तपस्या भगवान श्री कृष्ण को बहुत पसंद है। इसलिए एकादशी तिथि को माधव तिथि कहा जाता है। माधव माने भगवान श्री कृष्ण का नाम है, भगवान की ही यह तिथि। माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी। ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं कि कितना भी प्रयास करके यह माधव तिथि, यह एकादशी व्रत का निश्चित पालन करना चाहिए, और सब व्रत करने की जरूरत नहीं है। एकादशी व्रत का पालन करना, यही हम सब वैष्णव का उद्देश्य होना चाहिए, इसी से हमें शांति मिलेगी। आप लोग कह सकते हो कि एकादशी व्रत क्यों रहे और आप दूसरे व्रत रहने के लिए क्यों ना कर रहे हैं? जीवन में हम जो भी कार्य करते हैं तो हमें हमारे मन और हमारी बुद्धि के अनुसार नहीं करने चाहिए। सबसे पहले यह कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होने चाहिए, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए यह तपस्या होनी चाहिए। और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कौन सी तपस्या करनी चाहिए, यह कृष्ण से अच्छा कौन बता सकता है? मैं अक्सर दृष्टांत देता हूं कि मान लीजिए एक बहुत प्यासा व्यक्ति, 1 महीने से प्यासा व्यक्ति आपके सामने आए और आपको कहे कि मुझे बहुत प्यास लगी है, पानी दीजिए, तो हमें बहुत भाव आ जाए, बहुत उत्साह आ जाए, और हम पानी के बदले उसे घी का घड़ा लेकर दे दे, तो क्या उसकी प्यास छिपेगी? अरे हम कहेंगे नहीं, पानी से घी महंगा होता है, बहुत महंगा होता है, प्राप्त करने में कठिन है, फिर भी उसकी प्यास क्यों नहीं बुझेगी? अरे भाई, उसे पानी चाहिए तो पानी ही देना चाहिए, तब ही वो प्रसन्न हो सकता है। वैसे भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है तो कृष्ण जो कहते हैं वही करना चाहिए, तब ही कृष्ण प्रसन्न होंगे। हम हमारी बुद्धि के अनुसार कुछ भी करते रहेंगे, भले वो बहुत बड़ी तपस्या हो और दूसरों के कहने के अनुसार। हमने तो बहुत बार पूछा है, कुछ लोग एकादशी को छोड़कर और सब नाना प्रकार के व्रत रहते हैं, तो हम पूछते हैं कि आप ये व्रत क्यों रहते हो, किसने बताया, कहां लिखा है, क्योंकि हमें उसी बात को मानना चाहिए जो शास्त्र में लिखा है। तो हमें कहते हैं कि नाना प्रकार के व्रत आप क्यों रहते हो, तो वो लोग कहते हैं कि हमारे गांव में 10 लोग रहते थे इसलिए हम भी रहने लगे, हमारे फैमिली में कुछ लोग ये व्रत रहते हैं इसलिए हम भी रहने लगे। शास्त्र में किसी कोई भी जगह पर ये और कोई व्रत करने के लिए नहीं लिखा है, परंतु एकादशी व्रत करने के लिए सभी शास्त्र में, सभी शास्त्रों का प्रमाण हमारे पास उपस्थित है। सर्वप्रथम गरुड़ पुराण में गरुड़ जी, एक समय की बात, गरुड़ जी उड़ते उड़ते भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु का वाहन है, भगवान विष्णु जब चलते हैं तो गरुड़ जी के ऊपर सवार होकर चलते हैं। तो गरुड़ जी भगवान विष्णु के पास जाकर जिज्ञासा किए कि प्रभु आप हमें सुनाइए कि इस संसार में, इस मृत्यु लोक में जीने वाले मनुष्य को आपकी प्राप्ति करने के लिए क्या करना चाहिए। तब भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को जो उपदेश दिया वह उपदेश ही गरुड़ पुराण के रूप में प्रचलित हुआ। तो उस गरुड़ पुराण नामक शास्त्र में भगवान विष्णु, अब भगवान से ज्यादा अपने बारे में कौन बता सकता है, भगवान विष्णु गरुड़ जी को कहते हैं कि यदि मुझे प्रसन्न करना हो तो एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। बिल्कुल क्लियर कह रहे हैं, एकादशी व्रत का पालन करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, ये शास्त्र में कहा गया है। और हमें हमारे जीवन में जो भी कार्य करना है शास्त्र के अनुसार करना चाहिए। हमारा मन और बुद्धि गलत हो सकता है, दूसरों के मन और बुद्धि गलत हो सकते हैं, परंतु शास्त्र अपौरुषेय ग्रंथ है, शास्त्र साक्षात भगवान का ही स्वरूप है, इसलिए शास्त्र में जो लिखा है वही बात हमारे जीवन में धारण करनी चाहिए। शास्त्र में बिल्कुल क्लियर लिखा गया है कि एकादशी व्रत का पालन करने से ही भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। आप कहोगे हम कैसे माने, पुराणों में कथा भी आती है, बहुत सुंदर कथा है किस प्रकार, कब से यह एकादशी व्रत का तिथि प्रारंभ हुई। तो पुराणों में कथा है, बहुत समय पहले की बात है, ब्रह्मा जी को तो आप सब लोग जानते हैं, ब्रह्मा जी हमारे इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी चार मुख वाले हैं, चतुर्मुख ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी अपने हाथ में वेद रखते हैं। भगवान ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तब भगवान विष्णु ने तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये ब्रह्मा जी को सारा वेदों का ज्ञान सुनाया, और उस दिन से ब्रह्मा जी ने सभी वेदों को धारण कर लिया। तो ब्रह्मा जी वेद को रखते हैं, ब्रह्मा जी के पास वेद होते हैं, आपने फोटो देखा होगा तो ब्रह्मा जी के हाथ में वेद आप देख सकते हैं। तो एक समय की बात, ब्रह्मा जी को नींद आ गई, ब्रह्मा जी को नींद आई, और उसी समय जब ब्रह्मा जी झपकी ले रहे थे उसी समय एक बहुत बड़ा असुर जिसका नाम था शंकासुर, शंकासुर नाम का असुर वहां पर आया और ब्रह्मा जी के हाथ से वेद को चुरा कर भाग गया। प्रश्न होता है क्या शंकासुर को वेदों को पढ़ना था, नहीं पढ़ना था, ये असुर वेद नहीं पढ़ते हैं, परंतु असुरों का स्वभाव होता है दूसरों को परेशान करना। यद्यपि उसे वेदों को पढ़ना नहीं था, लिखना नहीं था, परंतु दूसरों को परेशान करना यही असुरों का स्वभाव। असुरों की व्याख्या पद्म पुराण में दी गई है, जब से यह पृथ्वी बनी है, जब से यह संसार बना है, इस संसार में दो प्रकार के जीव होते हैं, द्वै भूते लोकेस्मिन, कहते हैं दो प्रकार के जीव इस लोक में उपस्थित हैं, देव आसुर एवच, कौन है, कहते हैं देवता और असुर। तब प्रश्न पूछा गया, देवता किसे कहते हैं और असुर किसे कहते हैं, तब कहते हैं विष्णु भक्ता सुरा प्रोक्ता, भगवान विष्णु के जो भक्त होते हैं उसे देवता कहते हैं, और आसुरत एतद विपर्यय, और उससे बिल्कुल विपरीत भगवान विष्णु के जो शत्रु होते हैं, विष्णु के जो द्रोही होते हैं उसे असुर कहते हैं। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु के द्रोही और केवल दूसरों को परेशान करने वाले असुर ब्रह्मा जी को जब नींद आई तो वह शंकासुर नाम का असुर ब्रह्मा जी के हाथ से वेदों को चुरा कर भाग गया और समुद्र में जाकर छिप गया। तो भगवान श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा आप सब लोग जानते हैं भगवत गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि होती है। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी के वेदों की रक्षा करने के लिए हयग्रीव नाम का अवतार धारण किए। हयग्रीव माने घोड़ा। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी के वेद की रक्षा करने के लिए घोड़ा बन गए। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए क्या कुछ नहीं बनते हैं। कभी नरसिंह बन जाते हैं, कभी नर बनते हैं, कभी पशु बनते हैं, यहां तक अपनी पृथ्वी का उद्धार करने के लिए सुअर बन गए, सुकर बन गए। भगवान अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। ब्रह्मा जी के ऊपर कृपा करने के लिए हयग्रीव अवतार धारण किए, समुद्र से उस शंखासुर नाम के असुर को बाहर निकाला, युद्ध हुआ और युद्ध करके शंखासुर का वध किया और भगवान विष्णु उसके पास से वेद लेकर ब्रह्मा जी को वापस दे दिए और भगवान अपनी लीला समाप्त की। जब यह लीला हो गई तब शंकासुर नाम के असुर का एक पुत्र था जिस पुत्र का नाम था मूर। मूर नाम का एक असुर उनका पुत्र था। मूर को जब पता चला कि मेरे पिता शंकासुर का वध विष्णु ने किया है, वे विष्णु का बहुत बड़ा शत्रु बन गया और मन में ठान लिया कि विष्णु को मुझे मारना है। परंतु वे जमाने के असुर भी जानते थे कि विष्णु को मारना कोई आसान काम नहीं है, विष्णु को मारने के लिए शक्ति चाहिए। इसलिए वह मूर ने बहुत बड़ी तपस्या की, यज्ञ किया और शिव जी को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया। उन्होंने सोचा कि किसको प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करूं, तो उसे शिव जी मिले क्योंकि शिव जी बहुत तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए शिव जी का एक नाम है भोलेनाथ। बेचारे भोले हैं, एक बिली पत्र चढ़ा दीजिए, पानी और दूध चढ़ा दीजिए, तुरंत प्रकट हो जाएंगे। और कभी कभी प्रश्न होता है शिव जी तुरंत प्रकट क्यों हो जाते हैं। शिवजी तुरंत प्रकट होने का अर्थ यह है, इसलिए हो जाते हैं क्योंकि शिवजी कैलाश में बैठकर दो ही काम करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं और भागवतम की कथा करते हैं। अब आप देखते हैं शिवजी की बात छोड़ दीजिए, यहां भी यह भागवत और गीता के प्रवचन में कोई डिस्टर्ब करने आए तो हमें ठीक नहीं लगता है। तो शिवजी वहां पर नित्य निरंतर अपने भाव में रस में लगातार अविरत अजस गति से भागवत कथा करते हैं और यहां से कोई उसे डिस्टर्ब करते हैं कि आइए हमें दर्शन कीजिए, शिवजी डिस्टर्ब हो जाते हैं, कहते हैं छोड़ो दो मिनट के लिए भागवत को साइड में रखो, तुरंत नीचे आते हैं, भाई क्या चाहिए देकर चले जाते हैं। कारण यही है। शिवजी आए, प्रकट हुए, बोला क्या चाहिए। तब वो मूर ने कहा कि काम करो, मुझे इस दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति बना। शिव जी ने कहा तथास्तु, कह के निकल गए। अब मूर बहुत बड़ा शक्तिशाली हो गया। आप बंदरों का स्वभाव तो जानते होंगे, कुछ लोग वृंदावन गए होंगे, कुछ लोग जंगल में। बंदरों का स्वभाव होता है बहुत चंचल होते हैं, यहां से वहां, वहां से वहां। वृंदावन में तो हम देखते हैं कि हम जब परिक्रमा करते हैं तो कुछ लोगों के का चश्मा निकाल कर चले जाते हैं और छत के ऊपर बैठकर जैसे वे व्यक्ति चश्मा पहनता है वैसे बंदर भी पहन लेता है। उसे कुछ चश्मा की जरूरत नहीं है लेकिन ये बंदरों का स्वभाव है। तो ऑलरेडी बंदर चंचल होते हैं और ऊपर से उसे शराब पिला दिया जाए तब तो कंट्रोल के बाहर हो जाएंगे। वैसे जन्म से तो यह असुर था, विष्णु का द्रोही था और ऊपर से शिव जी से शक्ति प्राप्त कर लिया, अब तो संसार में उत्पात मचाने लगा। इस पृथ्वी में जितने भी लोग यज्ञ तपस्या हवन होम करने वाले थे सब का ध्यान यज्ञ तपस्या बंद करा दिया, सबको परेशान करने लगा। तत्पश्चात स्वर्ग लोक में चला गया, स्वर्ग लोक में जाकर इंद्र का इंद्रासन खाली करा दिया। इंद्र समेत सभी देवताओं को मार कर पीट कर स्वर्ग से बाहर निकाल दिया और स्वर्ग के ऊपर राज्य करने लगा। स्वर्ग में जाकर जब राज्य करने लगा, इंद्र इत्यादि सभी देवता वहां से भागे और भागकर भगवान विष्णु की शरण में आए। देखिए सभी भक्तों को याद रहना चाहिए कि ये देवता देवता भी देवता के पास भी ये स्वर्ग टिकता नहीं है, और देवता लोग भी ये स्वर्ग प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु के पास जाते हैं। तो हम सब बुद्धिमान हैं, हमें किसके पास जाना चाहिए, ये स्वतंत्रता हमारे पास है। सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए, प्रार्थना करने लगे, प्रभु प्रभु ये मूर और उनकी सेना हम पर बहुत टूट पड़ी है, हमारा वध कर रही है, आप कृपया करके इसका कुछ करो। तब भगवान विष्णु ने सांत्वना दिया और कहा कि आप एक काम करो, उसके साथ युद्ध प्रारंभ करो, मैं भी युद्ध करने के लिए आ रहा हूं। यहां पर इंद्र समेत समस्त सेना और भगवान विष्णु युद्ध करने के लिए मूर के पास गए। मूर भी अपनी सेना लेकर आया। स्वर्ग में बहुत बड़ा युद्ध हुआ, बहुत बड़ा युद्ध हुआ, और उस युद्ध में भगवान श्री विष्णु ने एक ऐसी लीला की कि उन्होंने मूर को नहीं मारा। भगवान ने देखा कि चलो थोड़ा बहुत वीर रस का आस्वादन करें। भगवान चाहते तो मूर को मारने के लिए रणभूमि में आने की जरूरत नहीं थी। जो भगवान अपने धाम में बैठकर इस ब्रह्मांडों का प्रलय कर सकते हैं, उसको एक असुर को मारने के लिए आने की जरूरत नहीं है। भगवान लीला करते हैं। यद्यपि भगवान मूर को मार सकते थे, परंतु भगवान ने अपना पूरा पूरा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया। जैसे आप देखते हो, एक छोटा सा पुत्र और एक पिता घर पे आपस में झगड़ते हैं, लड़ते हैं, मस्ती मजाक करते हैं, तो पिता पुत्र को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए पुत्र से हार जाता है, और पुत्र खुश होता है, मैं जीत गया। यद्यपि वास्तविक बात क्या है, पिता एक थप्पड़ पुत्र को मारे तो कोने में जाकर गिर जाएगा, परंतु पिता ऐसा करता नहीं है। वैसे ही भगवान ने सोचा कि थोड़ा परफॉर्मेंस कम कर देते हैं, देखते हैं क्या करता है। परंतु मूर तो देवताओं को मारते ही जा रहा था। इंद्र ने भगवान विष्णु को कहा कि प्रभु प्रभु आप ही अपनी लीला बंद करो और इस मूर को जल्दी मारो। भगवान ने कहा थोड़ी देर रुको। मूर और भगवान विष्णु आमने सामने हुए। दोनों का जब युद्ध प्रारंभ हुआ, उसी समय भगवान विष्णु मूर के साथ युद्ध करते करते रणभूमि छोड़कर भाग गए। भगवान की लीला भी अद्भुत है। रणभूमि छोड़कर भाग गए भगवान, और मूर भी भगवान श्री कृष्ण के पीछे भागने लगा, विष्णु के पीछे। भगवान विष्णु आगे आगे भाग रहे हैं, मूर पीछे पीछे दौड़ रहा है। भगवान विष्णु ने मूर को बहुत दौड़ाया, ऊपर के लोक में, नीचे के लोक में, पृथ्वी के लोक में, अलग अलग लोकों में बहुत दौड़ा, और अंत में भगवान एक गुफा में छिप गए। कुछ देर के बाद मूर भी उस गुफा के पास आया और बाहर खड़े खड़े बहुत चिल्लाया, कहा अरे कायर, बाहर निकल, रण छोड़कर भाग रहा है। बहुत गाली देकर भगवान श्री विष्णु को बहुत ललकारा, परंतु अंदर से भगवान बाहर नहीं आए। तब मूर ने सोचा कि ये अब बाहर नहीं आएगा, मुझे ही अंदर जाना होगा। मूर अपनी सारी सेना को लेकर उस गुफा के अंदर गया, जाकर देखा तो भगवान विष्णु सो रहे थे आराम से। मूर तो और क्रोधित हो गया कि इतना दौड़ दौड़ कर पसीने से लथपथ हूं, इतना पसीना टपक रहा है, और ये यहां आराम से एसी में सो रहा है। मैं इतना थका हुआ हूं, यहां पसीना निकल रहा है, ये आराम से सो रहा है। मूर देखा, उसे देखा नहीं गया। जो दुष्ट होते हैं उसे सुखी लोगों का जीवन देखा नहीं जाता है। मूर भगवान श्री विष्णु को सोए हुए देख नहीं सका, सोचा आप क्या करे। तब मूर तुरंत अपनी तलवार बाहर निकाला और सोए हुए भगवान को मारने चला। शास्त्र में एक नीति बताई गई है कि 10 प्रकार के लोगों को कभी नहीं मारना चाहिए। मत्तम, प्रमत्तम, अनुमत्तम, बालम, स्त्रियम, जड़म, वीरथम। कहते हैं जो मत है, जो शराब पीकर नशे में होता है, जो जन्म से पागल होता है, बालक को, स्त्री को, जिसके पास रथ नहीं है उसको, जिसके पास हथियार नहीं होता है उसे, और जो सो रहा है, ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं मारना चाहिए। यदि ऐसे व्यक्ति को मारते हैं तो उसे आतताई या उसे कायर कहा जाता है। तो सोए हुए को नहीं मारना चाहिए, परंतु यहाँ पर मूर भगवान सो रहे थे और उस सोए हुए भगवान को जैसे ही मारने गया तुरंत ही वहां पर अद्भुत चमत्कार हुआ। भगवान विष्णु के शरीर से एक शक्ति प्रकट हुई और देखते ही देखते उस शक्ति ने 16 साल की कन्या का रूप धारण कर लिया। और जो काम भगवान विष्णु ने नहीं किया वह काम वह 16 साल की कन्या सबसे पहले अपने तेज से मूर की सारी सेना का विनाश कर दिया, मार डाला। और जब वह कन्या मूर को मारने गई, मूर समझ गया कि बस अब मैं मरने वाला हूं, ये मुझे मार डालेगी। तुरंत मूर अपनी जान बचाने के लिए भगवान विष्णु के चरण में चला गया। भगवान जगे, मूर उनकी शरण में है, वे कन्या उसे मार रही है और मूर भगवान को कह रहा है प्रभु कृपया करके आप मुझे बचा लीजिए, मुझे शरण दीजिए। तो पहले तो भगवान विष्णु ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा, तुमने मेरे भक्तों को परेशान, साधु संतों को परेशान किया है। मूर ने कहा मैं आपके शरण हूं, आप तो शरणागत वत्सल है, आपके शरण में जो आता है आप उसकी रक्षा करते हो, कृपया करके मेरी रक्षा करो। तब भगवान ने कहा कि यदि जीवित रहना चाहता है तो ये पृथ्वी छोड़कर यहां से चला जाए। मूर ने कहा कि मैं पृथ्वी छोड़कर कहां जाऊंगा प्रभु, कहीं तो जगह दे दीजिए। भगवान ने कहा नहीं, तुम्हारे लिए इस पृथ्वी पर कोई जगह नहीं है, पृथ्वी छोड़कर यहां से निकल जाओ। मूर ने बहुत विनय की, बहुत प्रार्थना की, प्रभु मैं पृथ्वी छोड़कर कहां जाऊंगा, कोई एक तो जगह दे दीजिए। तब भगवान विष्णु ने कहा भक्तों अब ध्यान से सुनिए, मूल बात पर हम लोग आ रहे हैं। तब भगवान विष्णु ने मूर को कहा कि हे मूर, आज की तिथि के दिन मैं तुम्हें अन्न में वास दे रहा हूं, आज की तिथि के दिन तुम अन्न में रहना। भगवान ने मूर को अन्न में स्थान दिया और सौभाग्यवश उस दिन एकादशी तिथि थी, इसलिए भक्तों एकादशी तिथि के दिन ये मूर नाम के असुर का अन्न में वास होता है, इसलिए एकादशी तिथि के दिन अन्न वर्जित है, एकादशी के दिन किसी को अन्न नहीं खाना चाहिए। आप लोग का प्रश्न होगा अन्न खाने से क्या होगा, यद्यपि एकादशी के दिन अन्न में मूर दिखता नहीं है परंतु मूर का सूक्ष्म प्रभाव होता है, आसुरी प्रभाव जिसे कहते हैं। यदि एकादशी के दिन हम अन्न खाते हैं तो उस अन्न में आसुरी प्रभाव होता है, और उस प्रभाव को आप अपने जीवन में यदि आपकी सूक्ष्म बुद्धि हो तो सूक्ष्म बुद्धि से आप पहचान भी सकते हो। हम सबके जीवन में यह बात बनती है, आप देखो कभी कभार हम हमारे पति को, पत्नी को, बच्चों को क्रोध करके डांट देते हैं और मार भी देते हैं, बहुत क्रोध करते हैं, डांटते हैं और मारते हैं, और क्रोध करने के बाद हमें रियलाइजेशन होता है कि यह क्रोध नहीं किया होता तो अच्छा था, होता है क्रोध हो जाता है, सब कुछ कर बैठते हैं, बाद में यह बुद्धि आती है कि यह नहीं किया होता तो अच्छा। केवल क्रोध ही नहीं, कई प्रकार के पाप मैं गिनाना नहीं चाहता हूं, परंतु पाप करने के बाद सबको यह रियलाइजेशन होता है कि यह नहीं किया होता तो अच्छा था। तो क्या भक्तों पाप करने के बाद बुद्धि दूसरी आ जाती है? बुद्धि वही है, मन वही है, अहंकार वही है, परंतु हमारे शरीर में एक ऐसा आसुरी तत्व है जो जबरदस्ती न चाहते हुए भी वह क्रोध और पाप करा बैठता है, और वह आसुरी तत्व और कोई नहीं, आसुरी तत्व यह मूर है। एकादशी के दिन जब हम अन्न खाएंगे तब ये मूर नामक आसुरी तत्व का प्रभाव हमारे शरीर में आएगा। तो इस आसुरी प्रभाव से, आसुरी शक्ति से यदि बचना है तो एकादशी तिथि के दिन अन्न किसी को नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल शास्त्र की यह घटना है। भगवान श्री विष्णु ने मूर को अन्न में वास दिया और तुरंत मूर एकादशी के दिन उस अन्न में चला गया। आगे बहुत सुंदर कथा है कि उस दिन एकादशी तिथि थी और एकादशी तिथि के दिन उस कन्या का जन्म हुआ, इसलिए उस कन्या का नाम एकादशी रखा गया। और भी आचार्यों का मत है, कुछ आचार्यों का कहना यह है कि भगवान ने उस देवी को पूछा कि हे देवी आप कौन हो, तब उस देवी ने उत्तर दिया कि मैं एक दासी हूं, कहा कि मैं एक दासी हूं, इसलिए उस दिन के उस दिन से उसका नाम एकादशी हो गया। जो भी हो, उस कन्या का नाम एकादशी हुआ और शास्त्र में वर्णन है, उस समय भगवान विष्णु ने उस एकादशी को कहा कि आज मैं तुम्हें एक ऐसा वरदान देने वाला हूँ, न भूतो न भविष्यति, न तो भूतकाल में मैंने किसी को ऐसा वरदान दिया था, न तो भविष्य में मैं किसी को ऐसा वरदान दूंगा, ऐसा वरदान मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ एकादशी को। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि तुमने मेरा बहुत अच्छा कार्य किया है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि यदि इस संसार में कोई भी मनुष्य तुम्हारी तिथि का अर्थात एकादशी तिथि का पालन करेगा, उसे मेरी शुद्ध भक्ति प्रदान होगी। यदि कोई व्यक्ति एकादशी तिथि का पालन करता है, उसे भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। हम सब लोग को सुनने में बहुत छोटा लगता है शुद्ध भक्ति, बहुत आसान है भक्तों, ये भक्ति मिलना बहुत मुश्किल है। आप करोड़पति बन सकते हो, अरबपति बन सकते हो, गाड़ी बंगला नौकर चाकर पुत्र संतान सब कुछ मिल सकता है, परंतु भक्ति मिलना बहुत दुर्लभ है। और बड़े बड़े भक्त इस बात को जानते हैं। रूप गोस्वामी भक्ति सामृत सिंधु में भक्ति का पहला लक्षण लिखते हैं, सुदुर्लभा। भक्ति दुर्लभ ही नहीं, सुष्टु रूपेण दुर्लभ, दुर्लभाती दुर्लभ है, सबको नहीं मिलती है। आप देखिए इस जगत में कितने मनुष्य रह रहे हैं, और सभी मनुष्य की तुलना में कृष्ण की भक्ति करने वाले कितने हैं? 1% भी नहीं। समझिए कि 100% में से 1% भी कृष्ण की भक्ति करने वाले नहीं है। उस 1% में हम लोग आ चुके हैं, कितने भाग्यशाली हैं। और ये भी समझिए कि भक्ति कितनी दुर्लभ है। तो भक्तों, जो लोग एकादशी व्रत का पालन करते हैं, उसे यह सुदुर्लभ भक्ति प्राप्त होती है। भक्ति का अर्थ है भगवान ही प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए सभी भक्तों को, जो लोग वैष्णव परंपरा में हैं, एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। ये एकादशी साल में 12 महीने की 24 एकादशी और अधिक मास में 2 एकादशी अर्थात 26 एकादशी एक साल में आती है। 26 एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। और किस प्रकार से इसका पालन हो, प्रैक्टिकल रूप में संभव हो तो एकादशी के दिन निर्जला उपवास करना चाहिए। संभव हो इसलिए मैंने पहले कर दिया, इफ कोई कर नहीं सकता है, परंतु कुछ तपस्वी यहां पर होंगे। आज भी हमारे साथ कई सारे भक्त हैं, एकादशी के दिन निर्जला उपवास करते हैं। निर्जला माने पानी भी नहीं पीना है, निर्जला भोजन तो नहीं करना है, पानी भी नहीं पीना है। अच्छा, निर्जला नहीं कर सकते तो सजला करना चाहिए, केवल पानी पीकर। कुछ लोग ये भी नहीं कर सकते हैं, सजला भी नहीं कर सकते तो सफला कर सकते हैं, केवल फल खाकर और जूस पीकर। और यदि सफला भी नहीं कर सकते हैं तो भक्तों एक चीज याद रखिए, अन्न मत खाइए, बाकी सब कुछ खा सकते हैं। जितनी तपस्या करोगे उतने भगवान ज्यादा प्रसन्न होंगे। हमारे शरीर के अनुसार प्रैक्टिकल हम जिस प्रकार से कर सकते हैं, एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि एकादशी के दिन अन्न बिल्कुल वर्जित है। और एकादशी मान लीजिए आज है, तो कल रात को 12 बजे से लेकर फिर आज का पूरा दिन हुआ और दूसरे दिन द्वादशी के दिन सुबह, जितनी महिमा एकादशी की है उतनी महिमा द्वादशी में एकादशी को छोड़ने की भी है। यदि कोई एकादशी व्रत बहुत अच्छी तरह से पालन करता है और एकादशी को छोड़ने में वे समय को आगे पीछे हो जाता है, तो एकादशी का फल पूरा पूरा नहीं मिलता। जितनी महिमा एकादशी की है उतनी महिमा एकादशी छोड़ने की भी है। इसलिए एकादशी कब छूटती है, मान लीजिए, मैं आशा करता हूं कि अगले प्रोग्राम से सब लोग एकादशी व्रत रहेंगे। कितने लोग रहेंगे एकादशी व्रत, हाथ ऊपर कीजिए, रहे ठीक है। तो यहाँ पर तो सब लोग रहते हैं, मैंने खाली फोकट प्रवचन किया है, ठीक है, दूसरों को बताने के लिए काम आ जाएगा। तो एकादशी छोड़ने की महिमा मैं बता रहा था। एकादशी कब छोड़नी चाहिए, हमारे इस्कॉन में वैष्णव कैलेंडर मिलता है और उसमें एकादशी छोड़ने का समय लिखा होता है, उस समय के बीच में ही एकादशी छोड़नी चाहिए। और एकादशी छोड़ने की कितनी महिमा है भागवतम के नवम स्कंद में अम्बरीश महाराज की कथा से आप जान सकते हैं। बहुत सुंदर कथा है। अम्बरीश महाराज सवे मनः कृष्ण पदार विंदयो वांचांसी वैकुंठ गुणान वर्णन। ये अम्बरीश महाराज कौन थे? ये अम्बरीश महाराज पूरे विश्व के, भारत के नहीं, पूरे विश्व के चक्रवर्ती सम्राट थे, राजा थे। और राजा होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त थे। सवे मनः, उनके बारे में भागवत में आया है, सवे मनः कृष्ण पदार विंदयो। उनका मन यदि कहीं पर जाता तो केवल भगवान के चरणों में ही अटक जाता, आगे नहीं चलता। वांचांसी वैकुंठ गुणान वर्णने, उनके मुख से कुछ शब्द निकलता तो केवल भगवान श्री कृष्ण की कथा और उनका नाम लेने के लिए शब्द निकलता। करोर हरे मंदिर मार्ज नादिशु, उनका हाथ कहीं चलता तो केवल भगवान श्री कृष्ण के मंदिर का मार्जन करने के लिए चलता। राजा थे फिर भी भगवान के मंदिर को साफ करते थे। ऐसे अम्बरीश महाराज भगवान के शुद्ध भक्त चक्रवर्ती सम्राट, वे एकादशी व्रत का पालन करते थे। एक दिन की बात, उन्होंने एकादशी व्रत का पालन किया और दूसरे दिन सुबह जब एकादशी व्रत को तोड़ना था, पारण का समय था, उसी समय हमारे जाने माने ऋषि दुर्वासा जी, जो श्राप देने में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त किए हैं, एक्सपर्ट है, कुछ ही सेकंडों में क्रोधित हो जाते हैं और श्राप दे देते हैं, ऐसे दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज के घर पर आए और कहा कि मेरे लिए भोजन तैयार करो, मैं स्नान करने के लिए जा रहा हूं। इतना कह के चले गए। यहां पर एकादशी छोड़ने का जो समय था, वे समय निकला जा रहा था। यदि अम्बरीश महाराज दुर्वासा मुनि स्नान करके आने की राह देखे तो एकादशी छोड़ने का समय निकल जाए, और यदि उनके आने से पहले भोजन कर ले तो दुर्वासा मुनि का अपराध होगा, मेहमान को छोड़कर कैसे भोजन कर सकते, अतिथि को छोड़कर अब क्या करें। अम्बरीश महाराज तो धर्म संकट में फंस गए। पारण करना है, समय सर एकादशी को छोड़ना है और अतिथि की सेवा भी करनी है, क्या करें। तब अम्बरीश महाराज ने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को फोन लगाया या पूछा होगा कि आप ही बताइए अब क्या कर सकता हूं, मैं तो धर्म संकट में फंस गया हूं। तब बड़े बड़े व्यास इत्यादि ऋषि मुनियों ने कहा कि हे अम्बरीश जी, एक काम करो, आप पानी पी लो, पानी पीने से एकादशी छूट जाएगी। और पानी पीने से यह भी नहीं कहा जा सकता है कि आपने भोजन किया, इसलिए दुर्वासा जी का अतिथि सत्कार भी हो जाए। तो साधुओं के कहने पर अम्बरीश महाराज ने पानी केवल पिया, परंतु दुर्वासा ऋषि आए, पता चला कि अम्बरीश ने पानी पी लिया है, क्रोधित हो गए। इतने क्रोधित हुए अम्बरीश महाराज को मारने के लिए तुल गए। भागवत में वर्णन है, अम्बरीश महाराज ने अपने सिर से एक जटा निकाली, पृथ्वी पर पटकी और उस जटा से कृत्या प्रकट हुई, एक राक्षसी प्रकट हुई। और दुर्वासा ऋषि ने कृत्या को आदेश दिया कि इस अम्बरीश को तुरंत मार डालो, क्योंकि उन्होंने मेरी राह नहीं देखी। तो कृत्या जैसे ही अम्बरीश महाराज भगवान के शुद्ध भक्तों को मारने के लिए चली, उसी समय सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति करते हैं उस भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान का सुदर्शन चक्र उसके पीछे पीछे चलता है। जैसे ही कृत्या अम्बरीश महाराज को मारने गई, तुरंत भगवान का सुदर्शन चक्र सबसे पहले तो उस कृत्या का सिर काट दिया। और कृत्या को मारने के बाद जिस दुर्वासा मुनि ने उस कृत्या को प्रकट किया था, वे सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि के पीछे चला। दुर्वासा मुनि आगे आगे भाग रहे हैं, चक्र दुर्वासा मुनि के पीछे पीछे भाग रहा है। दुर्वासा मुनि बहुत भागे, चक्र उसके पीछे पीछे। सबसे पहले दुर्वासा मुनि भागते भागते अब सोचने लगे, भाग रहे हैं, यदि खड़े रह जाए तो वह चक्र उसे मार डाले। तो भागते भागते सोच रहे हैं क्या करूं क्या करूं। उतने में दुर्वासा मुनि भागते भागते कैलाश लोक, शिव जी के लोक में गए और शिव जी को कहा कि शिव जी, देवादिदेव, मेरे पीछे सुदर्शन चक्र पड़ा है, आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए। शिव जी ने कहा कि तुरंत मेरा कैलाश छोड़कर यहां से भागो। तुमने भगवान के भक्त का अपराध किया है, वैष्णव अपराध किया है, और वैष्णव अपराध को पनाह देना यह भी बहुत बड़ा पाप है। यदि थोड़ी देर भी तुम यहां पर खड़े रह गए तो मेरा यह कैलाश लोक जल जाएगा, तुरंत यहां से भागो, मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता हूं। दुर्वासा मुनि वहां से भागे, वहां से भागकर ब्रह्म लोक में ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने भी यही कहा कि आप इस लोक को छोड़कर भागो, अब तुम्हारी रक्षा वही कर सकता है जिसका यह चक्र है। दुर्वासा जी समझ गए कि भगवान विष्णु ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। ब्रह्म लोक छोड़कर दुर्वासा जी वैकुंठ लोक में गए। वैकुंठ लोक में जाकर भगवान को प्रणाम किया, प्रभु आपका सुदर्शन चक्र अब तक तो मेरी पीठ को जला दिया है, मुझे मार डालेगा, मेरी रक्षा करो। तब भगवान विष्णु ने दुर्वासा जी को कहा कि हे दुर्वासा, अहम भक्तो पराधीन, मैं मेरे भक्तों के अधीन होता हूँ, ये चक्र अब मेरे बस की बात नहीं है। यदि तुम्हें बचना है, सबसे पहले तुम बच ही नहीं सकते हो। यदि तुमने मेरा अपराध किया होता तो मैं तुम्हें बचा लेता, परंतु तुमने मेरे भक्त का अपराध किया है, इसलिए तुम्हें मैं भी नहीं बचा सकता हूँ। यदि तुम्हें बचना है तो तुमने जिसका अपराध किया है उस परम शुद्ध महान भक्त अम्बरीश महाराज की शरण में जाओ, वे शायद तुम्हें बख्श दे, तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। तुरंत दुर्वासा मुनि वैकुंठ से दौड़ते दौड़ते इस पृथ्वी लोक पर अम्बरीश महाराज के चरणों में आए। दुर्वासा मुनि जब से गए थे और वापस आने में एक साल बीत गया। भक्तों भक्त की महिमा तो देखिए, एक साल तक अम्बरीश महाराज ने दुर्वासा मुनि की राह देखने के लिए कुछ नहीं खाया। उन्हें सोचा कि अतिथि घर पर भूखे चले गए, मैं कैसे भोजन कर सकता हूँ। भागवत में वर्णन है, जिस स्थान पर अम्बरीश महाराज खड़े थे उसी स्थान पर खड़े रहे, और जब दुर्वासा मुनि भाग कर वहां पर आए, अम्बरीश महाराज खड़े थे और उन्होंने कहा कि मैं आपकी ही राह देख रहा था। एक साल तक उन्होंने उपवास किया और दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज के चरणों में पड़े, मुझे क्षमा कर दीजिए। अम्बरीश महाराज ने कहा, मैंने कहा तुम्हें क्षमा नहीं किया। तुरंत अम्बरीश महाराज ने कहा कि यदि मैंने कृष्ण की भक्ति की है, मेरी सारी भक्ति दाव पर लगा देता हूँ, ये सुदर्शन चक्र विलीन हो जाए। और अम्बरीश महाराज के कहने पर वह सुदर्शन चक्र वापस चला गया। उस समय दुर्वासा जी ने अपना उद्गार कहा है कि आज मैंने विष्णु के भक्त की महिमा जान ली। आज तक मैं नहीं जानता था ये कृष्ण के विष्णु के भक्त कैसे होते हैं। भगवान श्री कृष्ण के भक्त अपकार करने वालों के ऊपर भी उपकार करते हैं। यदि कोई भगवान कृष्ण के भक्त को मारने भी चले, फिर भी वे उनकी रक्षा करते हैं, ये भक्तों का स्वभाव है। कथा बहुत सुंदर है, भाव यह है, जानना इतना है, अम्बरीश महाराज पारण एकादशी करते थे और पारण का समय बचाने के लिए बहुत सुंदर यहाँ पर अपना आचरण किए। तो भागवत की यह सब कथाओं से, गरुड़ पुराण और अन्य पुराणों से एक ही स्वर, एक ही सार निकलता है, तपस्या केवल कृष्ण के लिए होनी चाहिए और कृष्ण को यदि प्रसन्न करना है एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। यदि हम एकादशी व्रत का पालन करेंगे, कृष्ण को प्रसन्न करेंगे, तो गीता के अनुसार ज्ञात्वा माम शांति निच्छति, हम सुख और शांति को प्राप्त होंगे, इस जीवन में भी सुखी हो जाएंगे और जीवन के बाद हम भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे। इसलिए सभी भक्तों से निवेदन है, एकादशी व्रत का पालन कीजिए। और जो एकादशी व्रत का पालन करते हैं उसे एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, एकादशी के दिन उपवास किया जाता है। उप का अर्थ होता है निकट और वास का अर्थ होता है बैठना। एकादशी के दिन ज्यादा से ज्यादा भगवान और भगवान के भक्तों के निकट बैठना चाहिए, और भगवान की भक्त या भगवान की कथा और भगवान के नाम के निकट। अर्थात उपवास का अर्थ होता है ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथा सुननी चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, ग्रंथ पढ़ने चाहिए। इसलिए हमारे इस्कॉन में एकादशी के दिन 25 माला करने का व्रत होता है, जो चैंटिंग करते हैं। इसे रेगुलर तो 16 माला जप होता है, परंतु एकादशी के दिन 25 राउंड होता है। तो एकादशी के दिन ज्यादा से ज्यादा भगवान की भक्ति होनी चाहिए और इसी से भगवान प्रसन्न होंगे। हरे कृष्ण। आप सबका धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।